ہم تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر 53 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقل لعبادی یقول اللتی ہی احسن. اور آپ حکم دیجئے میرے بندوں کو کہ وہ ایسی باتیں کیا کریں جو بہت عمدہ ہوں, اچھی باتیں کیا کریں, خراب باتیں نہ کیا کریں. ایک دوسرے کے بارے میں تو خاص طور پہ بہت ہی احتیاط کے ساتھ بات کیا کریں. کیوں؟ اس لیے کہ ان الشیطان ینزغ بینہم, بے شک شیطان ان کے بیچ میں فتنہ و فساد برپا کرنا چاہتا ہے. کیوں بھائی, اس کو کیا مسئلہ ہے؟ اس لیے کہ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا, کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. یہاں سے سبق کا آغاز ہے, لیکن پیچھے والی آیتوں ہی کے ساتھ بات کنٹینیو ہوتی ہے. ہم نے پچھلے سبق میں دیکھا کہ مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیتے تھے, آپ کے اوپر الزامات لگاتے تھے, کبھی شک کی بات کرتے تھے, کبھی آپ کو کہتے کہ آپ رجل مسخورہ ہیں, کبھی ام جمیل کی بات ہوئی کہ اس نے غصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارنے کی کوششیں کی, اور آپ کی باتیں سننا ان کو بالکل بوجھل لگتا تھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر بوجھ ڈال دیے تھے. جب وہ سننا نہیں چاہتے تھے تو اللہ نے ان کو سنوانا نہ چاہا, اور اللہ کی بات نہ سننے والے جو لوگ ہوتے ہیں پھر وہ کبھی بھی یہ نہیں مانتے کہ ہم نہیں سننا چاہتے. وہ باہر جا کر بات کیا کرتے ہیں کہ بات ٹھیک نہیں ہے, یا ہماری مرضی کی نہیں ہے, یا ہماری رعایت نہیں رکھی جاتی, ہم جو سوچتے ہیں ویسا نہیں کیا جاتا. اللہ تعالیٰ نے اسی ٹیکس کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کو ایک بڑا خوبصورت ادب سکھایا عمومی طور پر, اور خاص طور پہ دین کی محفلوں کو اٹینڈ کرنے والے, دینی اداروں سے منسلک لوگ, دین سیکھنے اور سکھانے والے لوگوں کو ایک بڑا ہی خوبصورت ادب سکھایا, اور وہ کیا کہ یقول اللتی ہی احسن. زبان کا استعمال سوچ سمجھ کے کرو, کیونکہ زبان کی بے اعتدالیاں انسان کو بہت دور پھینکتی ہیں. بہت بڑے بگاڑ جو دنیا میں پیدا ہوتے ہیں اس کی وجہ زبان کا غیر مناسب استعمال ہے, کیونکہ زبان کے گھاؤ نہیں بھرا کرتے. شیطان کا بندے کے اوپر قابو نہیں آتا جب تک بندے کی زبان نہیں کھلتی. یہ جملہ لکھ لیں. معاملات میں شیطان کی خواہش کیا ہے؟ کہ وہ دو لوگوں کے بیچ میں فتنہ ڈالے. شوہر بیوی, گھریلو معاملات, اس کو تو چھوڑ دیں, پیچھے ٹیکس چل رہا ہے دین کے نام پہ, تو اسی کو سامنے رکھے. اگلی آیتوں میں ہم پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ, وہاں آپ کو ترتیب لکھاؤں گی کہ شیطان کس طریقے سے لوگوں کو جنت سے دور اور جہنم سے قریب کرتا ہے. یہاں بس اتنی بات پہ اکتفا کر دوں کہ شیطان نہیں چاہتا کہ دین کا کام پن پہ. وہ لوگوں کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے, جو آتے ہیں ان کے دلوں میں بوجھ پڑتا ہے, وہ باہر جا کے غلط باتیں کرتے ہیں. اسی طرح بعض دفعہ شیطان جو ہوتا ہے زبان کا اتنا بیجا استعمال کرواتا ہے کہ لوگ دینداروں کے بارے میں لطیفے کہتے, ان کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کہتے, اور وہ معروف کر دی جاتی ہیں. کوئی عام انسان کوئی غلط کام کرے تو کوئی اتنا نہ اچھالے, اور کوئی دین والا شخص ذرا سا بھی غلط کام کرے یا غلط نہ بھی کرے, وہ جائز اور ٹھیک کام بھی کرے, تو شیطان فوراً آ کے پٹیاں پڑھاتا ہے کہ دیکھا یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے. تو کہا کہ بس تم اگر اپنے آپ کو اس دشمن سے بچانا چاہتے ہو تو تھوڑے سے محتاط ہو جاؤ, اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دو, بلکہ یقول اللتی ہی احسن, اچھی باتیں کیا کرو, احتیاط سے بات کیا کرو. اس میں ہمارے اپنے عمل کی بھی ایک بات ہے, اور وہ کیا کہ جب بھی کبھی ہم کسی کے بارے میں بولیں 10 دفعہ سوچیں, میں ایسی ہوں, کسی کے بارے میں کہنے لگ رہی ہوں, سوچ رہی ہوں کیا میں اس کی جگہ ہوتی تو میں ایسی ہوتی, اور جو بات سوچیں کہیں اس کی بارے میں سوچیں. مجھے کسی نے ایک بار کسی کی بات کہی, ایسی اپنا کوئی مسئلہ پیش کر رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ کسی تیسرے بندے کے بارے میں دوسرے دو دین والے آپس میں بڑی باتیں کرتے تھے, لیکن میں ان کی سنتی تھی, میں چپ تھی کیونکہ میں ان کے ساتھ چل رہی تھی, ان کا حصہ تھی, لیکن میرا دل نہیں مانتا تھا جو لوگ باتیں کر رہے ہوتے تھے اس تیسرے بندے کے خلاف. لیکن اب الحمدللہ مجھے کلیریفیکیشن ہو گئی کہ نہیں, ان کی غلط فہمی تھی, وہ بندہ ایسا نہیں ہے. बीसियों मिसालें आपको अमली ज़िंदगी की यहाँ मिल जाएंगी कि आप लोगों के लिए कभी कुछ सोच रहे होते हैं, कभी कुछ और सोच रहे होते हैं। कभी ऐसा नहीं होता, कभी आपको एक बंदा बड़ा ही अच्छा लगता है, आप कहते हैं तो बड़ा नेक है, और एकदम बैठे बैठे आपके दिल में आता है नहीं दाल में कुछ काला है, कोई खोट ज़रूर है। ऐसे ही बस नमाजें और मेहराब डले हुए और दाढ़ियाँ रखी हुई हैं। बस समझ लें, जिस बंदे के लिए आप एक छोटा सा क्राइटेरियन लिख लें, हर जगह काम आएगा इंशाल्लाह। इवन शौहर बीवी के रिश्ते में भी, इवन आपको रिश्तेदारों में औलाद के मामले में, किसी बंदे को अक्सर तो आप अच्छा समझें, लेकिन कभी कभी आपके दिल में उसके बारे में कोई वसवसा या गलत ख्याल आए, तो वो जो कभी कभी का ख्याल है ना, वो है कि इन शैतान यंज़ग़ु बैनहुम, शैतान तुम्हारे बीच में झगड़ा कराना चाहता है, वो चाहता है कि तुम फ़ायदा ना उठाओ। ये जो लफ्ज़ है ना नज़ग़ा, नून ज़ा गैन, इसका रूट है गुदगुदाने को कहते हैं। आगे कहीं आएगा तो मैं इसकी पूरी तफसील आपको लिखाऊंगी। जैसे आप किसी बंदे को, बच्चा बैठा ना, तो आप जाके उसको उंगलियों से क्या करते हैं, ये जो उंगलियों की पोरे होती हैं ना, इसके साथ किसी को छेड़ें तो क्या होता है आप महसूस करें, वो अपनी जगह से यूँ हिलता है ना, गुदगुदी करना, जिसको शैतान गुदगुदी करता है बंदे के दिल में। वो देखता है, कहता है ये शौहर बीवी तो कभी लड़े ही नहीं, ये तो बड़े खुश हैं, बीवी भी बड़ी मुतमईन है, शौहर भी है। वो आके बीवी के दिल में आके गुदगुदी करता है, और वो फिर शौहर पे गुस्सा करेगी, ये कौन सी नमाजें हैं, दीन नमाजें पढ़ना सिर्फ सिखाता है, लो ये कौन सा दीन है, बच्चों की इनको फिक्र ही नहीं। ये जो कभी कभी के जुमले आते हैं ना किसी रिश्ते में, जहाँ आप हमेशा अच्छे हों लेकिन कभी कभी गलत सोचें, तो फौरन पढ़ें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम और ज़ुबान को सीलें। और ये बात बहुत बड़ा फितना बन जाती है जब आप अपने शौहर की बात किसी दूसरे से कर दें, कि देखो भला मेरे शौहर इनका हाल, बच्चों को पूछते कोई नहीं, मस्जिद में बैठे रहते हैं, आपको तो गुदगुदी की शैतान ने, आप गुदगुदाए, आपकी ठीक हो गई थोड़ी देर में, आप कहते नहीं औज़ु बिल्लाह, शुक्र करो मस्जिद में बैठते हैं, जाके शराबखाने में तो नहीं बैठते ना, अल्लाह तेरा शुक्र है अब आप ठीक हो गए। लेकिन मसला क्या है कि जिससे आपने बात की थी वो सुनाएगा फिर आपकी बातें औरों को, और होते होते वो बात यूँ चल के आपके शौहर तक आएगी, और वो कहेगा अच्छा तुम मेरे बारे में ये कहती हो, फिर उसके दिल में शैतान आके गुदगुदी डालेगा। कभी आप इस शैतान को पहचान सके ना, आपको पता है कि हज़रत उमर को दिख जाता था, हमें नहीं दिखता, सच्चा ईमान लाएंगे तो आपको दिखेगा। मुझे थोड़े दिन पहले कोई सुना रही थी बातें, कह रही मुझे दिखता है शैतान। अब हमारे जहन में तो शैतान का तसव्वुर, जो पैंट कोट पहना हुआ और मुंह से धुआं निकल रहा और लंबी सी दुम है और आई एम योर शैतान, शेक हैंड करो, ऐसा तसव्वुर आता है ना। लेकिन हकीकत में आप दिल को खाली करते जाएँ बाकी चीज़ों से, इखलास मांगते जाएँ, आपको बिल्कुल शैतान दिखेगा। आप दूसरों को नहीं शैतान समझेंगे लेकिन उसके रूप दिखेंगे। तो इसमें हम आगे बात चुके करेंगे, तो इसलिए यहाँ इतनी बात नहीं करते। यहाँ एक और बहुत ही खूबसूरत इस लफ्ज़ का मानी किया गया, और वो क्या कि यकूलती ही या अहसन, तुम अच्छी बातें कहते ही रहो। और अच्छी बात से यहाँ मुराद क्या है, दीन की तबलीग। इसकी तफसीर की गई कि शैतान तो दीन वालों के बारे में लोगों के दिलों में शकूक और शुबहात डालता ही रहेगा, गलत बातें करता कराता ही रहेगा, लेकिन तुम उनकी बातों में ना उलझो, तुम उनकी बातों को छोड़कर अपना काम करते रहो। क्योंकि दीन की चीज़ सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, क्या कहाँ इसकी दलील, सूरत हामीम सजदा में आता है, वमन अहसन कौलम मिम्मन दा इल्लल्लाह, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत बात किसकी होगी जिसने अल्लाह की तरफ लोगों को पुकारा तो कहा छोड़ो, क्लैरिफिकेशन ना करो, सफाइयाँ ना पेश करो, जिसके दिल में जो ख्याल आया वह फिर आता है तो आता रहे, अल्लाह से कह दो कि अल्लाह ताला तू इसका दिल साफ़ कर दे और मैं चल रही हूँ ही अहसन करने। कहा कि ऐसे काम करते जाओ। और आप देखिए कि अल्लाह के नबी पर इतने हमले हुए, आपने कभी सफाइयाँ नहीं पेश की, कोई अखबार में आर्टिकल नहीं दिया, कोई इंटरव्यू नहीं दिया। इसलिए आप सब आज भी देखेंगे कि जो तो सर डाल के काम कर रहे हैं ना दीन का, उनको नहीं परवाह लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, लोग एक आर्टिकल लिख के उनको चिड़चिड़ाना चाहते हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। बड़े मारूफ आजकल एक हैं, और मेरा गुमान भी उनके बारे में अच्छे, जाकिर नायक, मेरा ख्याल है कि जितना मैं जानती हूँ कि उनकी दावत ज़्यादा जो है वो तौहीदी की बेस्ड है और कुफर और शिर्क से रोकते हैं, लेकिन मैं हैरान रह गई कि लोगों ने उनके बारे में भी इतनी बुरी बातें फैलाई हुई हैं। तो मैंने कहा कि अगर एक तरफ तो ये कि वो सारी दावत छोड़ें, सारे काम जो कर रहे हैं वो छोड़ें और बैठ जाएँ और कि आओ भाई जिस चीज़ को मुझसे शिकवा है तो वो पूरे कर लो, तो सोचिए मतलब अभी यही हम ही कर लें, कहते हैं चलें तफसीर यहाँ रोक लें, तो वहाँ फौजिया बाजी बैठी हैं, ज़रा आप आइए, आपको इस पूरे काम में हमसे जो शिकवे हैं वो कर लें, तो फिर देखें काम होता है कि नहीं। और शिकवे तो आपको बाद में पता चलेंगे हमसे, अभी तो आप कुरान पढ़ रहे हैं ना। लेकिन याद रखिए काम करते चाहिए, शिकवे शिकायतें रोने धोने होंगे, ट्रैफिक स्टक हो गया आप अपनी गाड़ी निकाल के ले जाएं, आप भागते रहें काम करते रहें, और तबलीग में खूबसूरत लफ्ज़ बात करें, खूबसूरत अंदाज़ इख्तियार करें, ख़ास तौर पे जब ऐसे लोग आपके सामने आ जाएं कि जिसके बारे में आपको शक हो ना कि इनके दिल में आपके लिए मैल है। कभी ऐसे हालात होते हैं, आपको साफ पता होता है आज जिन लोगों में आई हुई हूँ इनका कुछ सोच नहीं मेरे से मिलती, कुछ इनके दिल में तासुब है, ये तो बस किसी के बुलाने पर आ चुके हैं। उस दिन और ज़्यादा प्यार से बात करें और दिल मोहने वाली बात करें, ताकि उनके दिलों में अगर आपके बारे में कोई बात आ चुकी थी तो उसको अच्छी तरह से वो दूर करें। सूरह अनकबूत आयत 46 में आता है, वला तुजादिलु अहलल किताबि इल्ला बिल्लती ही आसन, अहले किताब से मत झगड़ा करो मगर आसन तरीके से। तो आप बताइए कि जब अहले किताब के साथ अच्छे तरीके से बात करनी है तो फिर मुसलमानों के साथ कैसे करनी है? और दीन फैल ही नहीं सकता जब तक के मुसलमान दीन को फैलाने वाले खूबसूरत तरीके से दीन ना फैलाएं। मार्केटिंग करनी पड़ेगी, आप किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं वो बहुत अहम होती है। इसी तरह याद रखिए कि ज़रा सी बात पे जिस तरह कस्टमर का जहन बदल जाता है ना, इसी तरह ज़रा सी बात पर मुबल्लिग की किसी बात पर सुनने वालों का भी जहन बदल जाता है। फिर इस तरह एक तीसरा मानी इसका और भी नोट कर लीजिए कि यकूलती अक्सन इन शैतान यंजुबैनहम, और वो क्या है कि अपने आपस के मामले में खुश असलूब रहो, अच्छे तरह मामले करो, दीनी या दुनियावी मामलात हो बेहतरीन रवैया अख्तियार करो। बाज़ दफ़ा अच्छे दिनों में तो बहुत अच्छी बातें होती हैं, लेकिन ज़रा सी बुरी बात हुई तो फिर एक दूसरे की बुराइयाँ चुनने लगे, ये ना करो। और अक्सर आप देखिए कि जो तबलीग करते हैं ना, लोग उनसे इख्तलाफी सवाल पूछते हैं, बाज़ दफ़ा नेल पॉलिश की बातें पूछते हैं, बाज़ दफ़ा कोई पर्दे की हिजाब की बातें करते हैं। तो लिहाजा जिस बात का जवाब देना हो वही दें। हमने सूरह नहल पे इस पे बात की थी कि हर सवाल का जवाब भी नहीं दिया जाता। फिर आगे फरमाया आयत नंबर 54, रब्बुकुम आलमु बिकुम, तुम्हारा रब तुम्हें खूब जानता है। कितना प्यारा जुमला है, दिल के ऊपर ठंडक पड़ने वाला फाहा रखा जा रहा है कि लोगों की परवाह क्यों करते हो, कोई ये कह रहा है तुम्हें, वो ये कह रहा है, कोई मजनू कह रहा है, कोई काहिन कह रहा है, क्या भला तुम्हारे रब को नहीं पता? आप देखिए कि एकदम मैंने ये आयत पढ़ी ना तो मुझे ऐसा लगा, सिर्फ बात समझाने के लिए कहती हूँ कि मिसाल है, सारे घर वाले बीवी से नाराज़ हों, बहू से जनी जो बहू आई हुई है, सास खुश नहीं, देवर को से शिकवे, नंदों को से शिकवे, जो मर्जी कह लें, और कोई उसके खिलाफ प्रोपेगंडे कर रहा है, और शौहर वो आके कहता है तुम्हें क्या फिक्र है, मुझे पता नहीं भला कि तुम सच्ची हो। जो लोग इस एक्सपीरियंस से कभी गुजरे होंगे वो जानते हैं कि इस एक लफ्ज़ से हो सकता है कि सब की बातों के घाव जो हैं वो भर जाएं। तो अब एक शौहर बेचारा जिसको अगर पता भी, बस क्या बल्कि अमूमन शौहरों को ये पता होता है कि हमारी बीवियाँ सच्ची हैं, कर कुछ नहीं सकते, किसी के आगे चलती नहीं है, कभी माँ के आगे मजबूर है, कभी बहनों के आगे खामोश हैं। लेकिन अल्लाह की ज़ात जब तुम्हें कह रही है कि मुझे पता है तुम कहाँ हो कैसे हो, तो फिर किसी इंसान को दूसरों की परवाह करने की ज़रूरत नहीं। कहीं यशा यरहमकुम, अगर वो चाहे तो तुम पर रहम कर दे, वहीं यशा युअज़्ज़िबकुम, और अगर चाहे तो वो तुमको सजा दे, वमा अरसलना का अलैहिम वकीला, और नहीं भेजा हमने आपको इनका ज़िम्मेदार बनाकर ताकि आप इनके कुफर के जवाब दें हों। इन आयत में ख़ास तौर पे कुछ बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ऐसी हुई थी कि जो मक्का के सरदार थे बड़े बड़े, वो बहुत ही इतराज़ात किया करते थे, उनका दिल करता था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसी बात कह दे जिसको हम दलील बनाकर चल पड़ें और आपको आपके दुश्मन बन जाएँ। अब अल्लाह के नबी सल्लम उनकी मोहब्बत में और उनके साथ अच्छा मामला करने की नीयत से अल्लाह ताला के साथ इस चीज़ की बहुत हिरस रखते थे कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे दे। अल्लाह ताला यहाँ अपने नबी को बता रहे हैं कि देखें मेरा मर्ज़ी है मैं आप पे रहम करूँ। आप पे रहम का क्या दो तरीके हो सकते हैं अल्लाह के नबी पर रहम के? पहला तरीका क्या होता है कि यही दुश्मन जो आज आपकी जान लेने वाले हैं, कल ये आपकी जान बचाने वाले बन जाएंगे, आपकी हिफाजत करने वाले बन जाएंगे। आज ये इतराज़ करते हैं कि अल्लाह आपने इनको क्यों चुना है, कल यही आपकी मदद करेंगे, आप سیرت میں انشاءاللہ ایسے بہت سارے واقعات پڑھیں گے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت ہی حالات تنگ کیے گئے تو آپ نے مکہ کو چھوڑ دیا، کہا میں نہیں رہتا ادھر، چل پڑے. تو پھر ایک صحابی تھے، مطم بن عدی تھے غالباً یا کچھ، ان کا نام میرے ذہن میں مکس اپ ہو رہا ہے، تو ان کے باپ آئے اور کہا اللہ کے نبی نہیں، چلیں آپ میری حفاظت میں. اور حرم میں آ کے انہوں نے کہا کہ دیکھو آج کے بعد اگر اس شخص کو کسی نے ہاتھ لگایا تو میں پھر اس سے نپٹوں گا. نبی نہیں مانا لیکن حفاظت کرائی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو میں تم پہ رحم کر دوں، یعنی کہ یہی دشمن جو آج بنے ہوئے ہیں کل تمہارے دوست بن جائیں گے، کیا بڑی بات ہے، اچھے طریقے سے یہی کام ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تم پر رحم کیسے کروں کہ آپ کی یہ خواہش کہ یہ لوگ دین کو سمجھ جائیں مان جائیں پوری ہو جائے، آپ کی یہ طلب سچی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں فائدہ دے گا، آپ بس اپنا کام کرتے رہیں. وہیں یہ شعذبکم، لیکن اگر آپ نے ان کی محبت میں اللہ کے کسی قانون کو بدلا یا بدلنے کی خواہش کی، یا پھر سوچیے گا کہ یہ اللہ کے نبی کے لیے نہیں ہے، کیونکہ آپ تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتے تھے اور اللہ کے نبی کے لیے کوئی عذاب کی باتیں نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ یہاں انداز وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے امت کو یہ بات بتا رہا ہے کہ آپ اپنا کام کرتے جائیے، اگر آپ نہیں کریں گے تو وہی کافر آپ کے سر پہ دوڑیں گے، جیسے کہ آج دوڑ رہے ہیں. آج ہم مسلمانوں نے جب اچھے طریقے سے تبلیغ نہ کی تو دشمن ہمارے اوپر حملے کر رہے ہیں. آج مسلمانوں کو مغدوب اور دعالین کے ہاتھوں سے کیوں عذاب دیا جا رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ مسلمانوں نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہاں بتا کر ہم سب سے بھی بتاتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ سب کچھ ہوگا. اور اس کی کئی مختلف تفسیریں کی جاتی ہیں جس کا خلاصہ کیا ہے کہ آپ اپنا کام کرتے جائیں. اگر مشرقین کو یہاں خطاب سمجھا جائیں ربو کو معلوم بکم میں، کہ تمہیں تمہارا رب جانتا ہے، بعض کہتے ہیں یہ اللہ کے نبی سے نہیں مشرقین سے خطاب ہے، تو پھر یشا یرحم کم کے معنی کیا کہ وہ اسلام قبول کر لیں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو عذاب کے شکار ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کا کام کیا ہے کہ بات کو پہنچا دیں. وہ رب کا عالم و بمن فس سماواتی والارض، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے. ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، ہم نے تو بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی. وآتینا داود زبورا، اور ہم نے داود علیہ السلام کو زبور دی. اہل مکہ کے اعتراض کا جواب ہے، کہتے تھے اس کو کیوں چنا گیا. سورہ زہرف آیت 31 میں بھی آتا ہے، کہتے تھے اگر یہ قرآن نازل ہونا تھا کسی بڑے شخص پہ نازل ہوتا، یعنی کہ عمر کا بڑا بندہ ہوتا، بڑا کوئی باروب ہمیں دکھتا، کوئی لگتا کہ بھائی اس کے سر پہ بال سفید ہیں، داڑھی والا ہے، یہ ہے وہ ہے، اور یا پھر بڑے گھر کا ہوتا، کوئی اس کے ساتھ اردلی ہوتے، کچھ ایسی باتیں ہوتی. کیونکہ سردار جو ہوتے تھے وہ سرداروں کو اسی لیے چنتے تھے نا ان کی دنیاوی چیزوں پہ. اور اصل میں اندر بات پتہ کیا تھی، ان سرداروں کے دل میں یہ خیال چھپا ہوا تھا کہ ہم میں سے کوئی چنا جائے گا. ایسے ہی جیسے کسی شہر میں 10-15 لوگ بڑے معروف ہوں، بہت سوشل ورک کرتے ہوں، بہت اچھے کام کرتے ہوں، اسی شہر کے وزیر یا مشیر یا کوئی اور کا چناؤ ہو تو وہ سوچتے ہیں نا ہم میں سے کسی کو بڑا بنائیں گے، اور بنا دیا جائے اس کو جو ہو سکتا ہے ان کی گاڑی چلاتا ہو تو مشکل ہے نا. اللہ نے اسی لیے آگے مثال دی حضرت داؤد علیہ السلام کی، پڑھ چکے ہیں کہیں ان کا تذکرہ، کہا ولقد فضلنا بعض النبی علی بعض، بعض نبیوں کو ہم نے بعض پہ دیا، کہیں خلیل ہیں تو وہ ابراہیم ہے، کہیں موسیٰ ہے تو وہ کلیم اللہ. تو داؤد کا تذکرہ کیوں کیا، کہ حضرت داؤد کیا تھے، تالوت اور جالوت کے قصے میں پڑھ چکے، ایک عام سپاہی تھے، اور قد کے بھی چھوٹے تھے، رنگ کے بھی کالے تھے، یعنی جسمانی خوبصورتی بھی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو زبور دے دی. تو اللہ کو پتہ ہے کس سے کتنا کام کروانا ہے. یاد رکھیے یہ صرف اور صرف اللہ کا فیصلہ ہے، اپنے دل کو اس پہ باندھ لیں. جس طرح آپ کو اپنی موت کا یقین ہے نا، اس طرح اس بات کا یقین کر لیجئے کہ اللہ کو خوب پتہ ہے کہ میں نے اپنے دین کا کام کس سے کرانا ہے. اللہ کو اس میں کبھی غلطی نہیں لگتی. اور دین کا کام کرانے میں یہ دین پڑھنا بھی ہے، جو اس وقت آپ سیکھ رہے ہیں نا، مت سوچیں کہ آپ اچانک آگے، اور جو نہیں ہے وہ نہیں آئے، وہ اچانک نہیں آئے، اللہ کی نظروں میں آپ، اللہ تعالیٰ اس وقت آپ کو ٹرین کر رہا ہے کہ آپ، اب اللہ تعالیٰ نے آپ سے اپنی کتاب کی خدمت کرانی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اگر آج آپ کے اندر اس چیز کے اوپر کوئی یقین نہیں ہے نا، تو آپ زیادہ دیر نہیں چل سکیں گے. تو اللہ نبی کو بھیجے، کسی کو بھیجے، تم اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہو؟ ہاں باقی رہ گئی بات، تمہیں اس کی باتیں اچھی نہیں لگتی تو پھر دوبارہ توحید ہی کی بات ہے. قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ، कहिए कि अब बुलाओ इनको जिन्हें तुम गुमान किया करते थे कि वो खुदा हैं अल्लाह के सिवा, वही जो उनके बुत थे। या फिर देखिए ज़ाम का लफ्ज़ है, गुमान और बात में मशकूक बात को कहते हैं। उर्दू में हम कहते हैं ना भाई तुम्हें किस बात का ज़ोम है, बहुत बड़े बने फिरते हो। झूठी बात मशकूक बात होती है। अल्लाह ताला ने उनकी खुश फहमियों की बात की कि अपने गुमान को खुद ही ईमान बना लेते हैं, ऐसे ही कह देते हैं ये करनी वाले हैं, ये बाबा जी हैं, ये फरिश्ते हैं, ये पीर हैं, ये औलिया हैं, तुमने गुमान किया, हम नहीं कहते। चलो कर चुके हो ना तो लाओ फिर, इनका इख्तियार है कुछ भी तो नहीं। फ़ला यमलिकूना कशफ़ दुर्र अनकुम, वो तो कुदरत नहीं रखते कि तकलीफ़ तुमसे कोई दूर कर सके। वला तहवीला, और ना ही से बदल सकते हैं। बस कहते हैं कि यहाँ उस कहत की तरफ इशारा है जिसका तस्करा पीछे हुआ था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब कुरैश को कहत में मुब्तला किया गया तो फिर अल्लाह के नबी के पास आए, अपनी खस्ता खाली का तस्करा किया, तो उस पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इन्हें बोलो कि इस वक्त क्यों मेरे पास आए हो, क्यों नहीं गए अपनी करनी वालों के पास, उनकी दुआएं जिनसे तुम मांगते थे, जिनके चढ़ावे चढ़ाते थे, आज जाके ज़रा उनसे कहो कि ये अज़ाब हमसे दूर कर दें, ये तकलीफ़ दूर कर दें। तो यहाँ मिन दून इल्ला से मुराद फिर फरिश्ते और बुज़ुर्गों की वो तस्वीरें और मुजस्मे जिनकी वो इबादत किया करते थे, या हज़रत उज़ैर और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिनको यहूद और नसारा ने इब्नुल्लाह कहा, जिसको मर्ज़ी बुला लो। इसी आयत की तफसीर में हाफ़िज़ इब्ने हजर जो हैं वो लिखते हैं कि वो लोग जो जिन्नों की इबादत करते थे बदस्तूर जिन्नों की इबादत पर कायम रहे, जबकि जिन ये बात पसंद नहीं करते थे, क्योंकि अब वो इस्लाम कबूल कर चुके थे और वो अपने रब की बारगाह में वसीला यानी आमाले साले के ज़रिए से तकरुब तलाश करने वाले हो गए। ये फतुल बारी की रिवायत है, तो इसको अगली आयत से हम ज़्यादा अच्छी तरह समझेंगे। कहा कि उलाइक अल्लज़ीन यदून यबतगून इला रब्बिहिमुल वसीला, वो लोग जिन्हें ये मुशरिक पुकारा करते हैं यानी नेक बुज़ुर्ग अच्छे जिनका तस्करा भी मैंने किया आपके सामने, वो बेचारे तो यबतगून इला रब्बिहिमुल वसीला, वो तो ख़ुद अल्लाह की तरह वसीला ढूँढ रहे हैं, उनकी तो ख़ुद आहोजारियाँ ये हैं कि अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे, उनकी तो अपनी ज़िंदगी अल्लाह से डरते हुए गुजर गई। ख़ुद अल्लाह के नबी को देखिए जिनका वसीला लेकर आज लोग बहुत कुछ शिर्क की तरफ चल पड़ते हैं, ख़ुद अल्लाह के नबी की ज़िंदगी देखें, कोई एक लम्हा तो अमन चैन का नहीं दिख रहा कि आपने कहा आज मेरा वेकेशन डे है या आज मेरी छुट्टियाँ हैं। आपकी तो छुट्टियों में भी काम होते थे, आपके तो प्लान और होते थे, आप एक जगह काम नहीं कर रहे होते थे, आप पहले दूसरी जगह प्लान बनाते थे फिर काम करते थे। बंदे मोमिन के पास छुट्टी नहीं होती, हाँ वो एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह हो सकता है, जैसे चांद है ना या सूरज, एक जगह निकलता है, अब हम कहते हैं जी सूरज चला गया उसकी ऑफ हो गई, ऑफ नहीं हुई, वो दुनिया के दूसरे हिस्से में ड्यूटी पे चला गया है। एक ईमान वाले को अपनी ज़िंदगी में यही असूल बनाना चाहिए, आप जहाँ रहें खैर से रहें लेकिन चांद बन के चमकें, सूरज बन के चमकें। अल्लाह के नबी तो पूरी ज़िंदगी तड़पते रहे लोगों के लिए, आहें भरते रहे, दुआएँ मांगते रहे, और आज लोग कहते हैं कि अल्लाह के नबी के वसीले से हमें बख्श दे। कहा जिनसे तुम मांगते हो वो तो खुद अल्लाह से मांग रहे हैं। अय्युहुम अक़रबू, कौन ज़्यादा है अल्लाह से, कौन सा बंदा अल्लाह से ज़्यादा करीब है। वह यरजून रहमतहू, वो तुम्हें रहमत कैसे देंगे, वो तो खुद अल्लाह से रहमत की उम्मीदें रख रहे हैं, उनको भी यकीन नहीं अपने बारे में कि मेरे साथ होने क्या वाला है, तो लिहाजा वो तो अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखते हैं। वह यखाफून अज़ाबहू, और उसके अज़ाब से डरते रहते हैं, क्योंकि इन्ना अज़ाब रब्बी का काना महज़ूरा, क्या आपका रब है ही बहुत डरने वाली चीज़। हज़र से हाज़ ऑल रॉ, कि अल्लाह का अज़ाब तो है ही इतना डरने वाला कि जिससे तो नबी भी डरते थे, तो क्या तुम उन डरने वालों से अब ये उम्मीद रखते हो कि कल वो तुम्हारी सिफारिश कर दें, ये नहीं हो सकता। इस पर हम बात कर चुके सूरत मायदा में तफसील के साथ कि अल्लाह की तरह वसीला ढूंढो, वसीला वसल से जोड़ने वाली चीज़, इंसान अपने आप नेक अमाल का वसीला बना सकता है, अल्लाह ताला के नामों का वसीला बना सकता है, अपने अखलास को वसीला बना सकता है। आप चाहें तो अपनी वो तफसीर देखें, उसमें तकरीबन 6-7 आपको पॉइंट्स लिखाए गए थे कि किस चीज़ को वसीला बनाया जा सकता है और किस चीज़ को वसीला नहीं बनाया जा सकता। बाकी रहेगी बात आज हमारे यहाँ जो वसीला लफ्ज़ एक इस्तेमाल होता है तवस्सुल के माने में, तो कुरान और सुन्नत से उसकी दलील नहीं मिलती। काम करेंगे तो बात बनेगी। دیکھیں یہاں کتنا اہم ہے نا، رحمت کی بھی بات ہے اور عذاب کی بھی بات ہے، کہ وہ نبی اور ولی جن کے بارے میں تم یہ سوچتے ہو کہ یہ کرنی والے ہیں اور تمہاری ان پہ اور ان کی رب پہ، اور جس کے بغیر تم بخشے نہیں جاؤ گے، تو یاد رکھو کہ جنت میں داخلہ رب کی قدرت سے ہوگا، کسی کی اجازت سے نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو چابیاں نہیں دی ہوئی جنت کی کہ اچھا چلو جس کو دل چاہے تمہارا اس کو لے آؤ۔ اللہ کے نبی اللہ کے عذابوں سے ڈرتے تھے، فرشتے ڈرتے ہیں، یخافون ربہم من فوقہم کا لفظ آتا ہے کہ جو ان سے اوپر ہے وہ تو اس سے بھی ڈرتے ہیں، تو پھر تم بھی ڈرو۔ پیچھے ہم سورۃ آل عمران میں پڑھ چکے، دو جگہ ایک ہی رکوع میں آیا تھا، ویحذرکم اللہ نفسا، لوگوں اللہ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے، کہیں آتا ہے فتقونی یا اولی الالباب، مجھ سے ڈرو اے عقل والو، کہیں آتا ہے فاحذرونی، اے لوگوں میرے عذاب سے ڈرو۔ کبھی اپنے آپ کو سوچیں، تنہائی میں بیٹھ کے ساری باتوں کو چھوڑ دیں، اپنے بارے میں پوچھیں کہ جب اللہ کی ذات کے سوا کوئی ہمارے پاس نہیں ہوتا تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو بالکل صحیح سمجھیں گے، پھر اصلاح کی کوشش کریں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم جس طرح لوگوں کی نظروں میں برائیوں سے رکتے ہیں، برے کام نہیں کرتے، بری چیزیں نہیں دیکھتے، اس طرح ہم تنہائی میں بھی اسی طرح ہو سکیں، اور یہ ساری چیزیں لوگوں کو عمل سے دور کرنے کی ہیں۔ ہاں آپ کوئی بنانا چاہتے ہیں اپنے لیے وسیلہ، کہیں اے اللہ آج کل قرآن پڑھ رہے ہیں، اے اللہ آج کل بڑی سردی میں آتے ہیں، اے اللہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آتے ہیں، اگر تجھے میرا یہ عمل پسند ہے تو اللہ میری بیماریاں دور کر دے، میرے بھائی بہنوں کی بیماریاں دور کر دے، میرے گھر والوں پہ رحم کر دے۔ مانگا کریں بڑے شوق سے، جتنا رستے میں وقت ہوتے ہیں مانگیں، اور یقین کریں کہ یہ چیز اتنا انسان کو پھر اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے۔ اس پہ بات ہم نے کی تھی سورۃ مائدہ میں بھی جب پڑھی تھی، کہ تین لوگوں نے غار میں پھنسنے کے بعد اپنی اخلاص والی نیکیوں کا تذکرہ کیا تھا، اور یہ وہ نیکیاں جو عام حالات میں بندہ کر نہیں سکتا، کہ رات ماں کے پاس کھڑا رہے دودھ کا پیالہ لے کر، یا نفس پہ قابو پا لے، یہ کون کرتا ہے جو صرف اللہ کے لیے کرتا ہے۔ اور یقین کریں ہم سب انسان ہیں۔ آپ کو پھر یہاں ایک چھوٹی سی بات عمل کے لیے بتانے لگی ہوں، کوئی اس سے یہ مت سوچے کہ بھائی آپ بھی ایسے ہی کریں یا کوئی حدیث کی بات ہے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ چونکہ میرا زیادہ کام ذہنی ہوتا ہے، کہ مجھے ہر وقت پلاننگ کرنی ہے کلاسز کی اور پڑھانا ہے یا تیاری، سب کے مختلف کام ہوتے ہیں، مجھے کوئی بہت سارے کام نہیں ہیں، لیکن ایک ہی جو کام ہوتا ہے الحمدللہ اس میں میری سوچ پورا وقت لگتی ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ ہم سب انسانوں کے رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں نا، تو غم خوشیاں آتی ہیں، ہمارے گھروں میں بھی پیچھے غم آئیں گے، بیماریاں آئیں گی، پریشانی آتی ہیں، کبھی کچھ آتا ہے۔ تو میں اپنی عادت آپ کو بتاتی ہوں کہ میں جب بھی مجھے خیال آتا ہے، کوئی بھی پیچھے مثال ہے میرے بھائی بہنوں میں کوئی مسئلہ ہے یا کسی کا بھی ہے، تو اس وقت میں جو بھی کام کر رہی ہوتی ہوں پورے اخلاص سے اللہ کو اس وقت کہتی ہوں کہ اللہ میں اس میٹنگ میں اس لیے بیٹھی ہوں کہ تجھے پتہ میں کیوں بیٹھی ہوں، اگر تجھے میرا یہ عمل پسند ہے نا تو میرے فلاں بھائی بہن کا یہ مسئلہ دور کر دے، اچھا میری ماں باپ کا یہ مسئلہ دور کر دے، اچھا میرے شوہر کا یہ مسئلہ دور کر دے۔ ایک لمحے میں وہ جب کوئی چیز دل کو لگی ہوتی ہے تو رہ رہ کے خیال آتا ہے نا، اب جس کام میں ہوتا ہے مجھے یقین کرے اس کے بعد اتنا سکون ملتا ہے، میں کہتی ہوں اللہ میں تو دعا مانگنے کے لیے میرے پاس اتنا وقت نہیں، کیونکہ سوچ ادھر چلی جائے گی، خیال آتا ہے رات کو اٹھتے میں، کروٹوں میں، جاگتے میں، اے اللہ آپ دیکھتے تیرے لیے کر رہی ہوں تو وہ کام کر دے۔ مثال ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ وہ باتیں نہیں ہیں جو کسی کے ساتھ کھولی جائیں، لیکن جیسے ماں باپ اپنی باتیں بچوں کو بتاتے ہیں نا، کہ جس سے آج کل ہم اپنے ماں باپ کی باتیں کوٹ کرتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ بعض دفعہ قرآن پڑھتے ہوئے تفاسیر سے احادیث سے بھی بعض دفعہ میں عملی چیزیں نہیں سمجھ آتی، لیکن جو کسی کے اوپر بیتتا ہے نا اس کو اگر ہم اپنی زندگی میں لیتے ہیں تو پھر زیادہ سمجھ آتی ہے۔ دعا قبول کی، میں آپ سب سے کہتی ہوں کہ آپ دعا کریں، مثال دے رہی ہوں صرف بات سمجھانے کے لیے، کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، عموماً لوگ پیل ٹاک پہ لکھتے ہیں روم میں فلاں کے لیے دعا کر دیں، فلاں کے لیے یہ کر دیں، یا اپنی بات کھول دیتے ہیں کچھ بھی، تو کس نے قبول کرنی ہے؟ اللہ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ 10, 20, 25 لوگوں کو کہتے ہیں کہ دعا کریں، ٹھیک ہے، کہنا چاہیے، کوئی بری بات نہیں، لیکن آپ کہتے ہیں اللہ یہ 10 بھی میرے لیے دعا کریں گے، 100 بھی کر دیں گے، کرنی تو نہیں نا، آخری رستہ تو تیری طرف ہے، تو اللہ تو میرے غریب کی سن لے، تو میرا بھرم ہی رکھ لے، میں کیوں اپنی بات کھولوں، میں کیوں اپنا غم کھولوں، میں کیوں تیرے لوگوں کے سامنے اپنا کھولوں، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ۔ تو یہ وسیلے جو ہوتے ہیں نا یہ محبت کے وسیلے ہوتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے کہ جب ہمیں تو اللہ سے فیس کرتے ہی ڈر لگ رہا ہوتا ہے، ہم تو آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملا سکتے، دکھائیں کیا اخلاص کے ساتھ، کچھ نہ کچھ تو کہیں گڑبڑ ہے، पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, पूरे शऊर के साथ तर्जमा याद करने बैठे और आपको याद आए कोई अपना पिछला, आपके अल्लाह तुझे पता है कि मैं सिर्फ तेरी मोहब्बत में ये तर्जमा याद कर रही हूँ, अगर तुझे मेरा ये अमल पसंद है ना तो मेरी माँ को सेहत दे दे। यकीन करें ये बेहतरीन वसीला होगा। मोहब्बत तो वो होती है ना जो दो के बीच में हो। आप कभी ऐसे कहते हैं, अब बात बड़ी अजीबोगरीब सी लगेगी कह सुनने और कहने में, लेकिन हम कह रहे होते हैं नबियों के साथ तो कोई बुरी नहीं लगती। बस आप देखिए कि आप शौहर के साथ बातें करते हैं तो मोहब्बत शौहर की और आपकी बीच की होती है या आप तीसरे की बात करें। मिसाल देती हूँ, बहुत ही मायूब बात है लेकिन सिर्फ बात इससे वाजह होती है। बस आप अपने शौहर से कोई बात मनवा रहे हैं तो आप कहें कि देखें ना, फिर वो मैं मेरी बहन जो अपने शौहर की बड़ी खिदमत करती है उसके वसीले से मैं आपसे कहती हूँ कि आप मेरे से मान जाएं। वो कहेगा तुम्हारी बहन को मैं क्या करूँ, बात नहीं बनती, मेरा ताल्लुक है, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपसे लाड से कह सकती हूँ नहीं ऐसे नहीं करें, मुझे आपसे मोहब्बत है, मैं कह दूंगी। तो मैं आपसे कहूँ वो देखे ना वो जो आपकी बहू का आपसे मोहब्बत है ना उसकी वजह से मेरी बात मान ले। तो कहें अच्छा बहू का, फिर तो मैं बहू की बात मानती हूँ, तुम्हारी क्यों मानूँ। यानी इतनी छोटी सी बात है जिसको आज इतना बड़ा बना दिया। अपना ताल्लुक पैदा करो, कहो, और ये हो नहीं सकता जब तक अल्लाह के लिए कुछ छोड़ते नहीं, कुछ कुर्बानियाँ नहीं देते, कुछ चीज़ें अल्लाह के लिए अपने नफ्स पे बोझल नहीं लेते। जब सादी सादी नेकियां करते कहते हैं ये तो सारी करते हैं, बस हम कह सकते हैं कि अल्लाह आज सुबह जो मैंने फजर पढ़ी थी उस फजर को जो मैंने इतना अच्छा पढ़ा था तो उसकी वजह से मेरी दुआ कबूल कर। तो अंदर से चपत पढ़नी है, चुप कर, पता नहीं सूरत भी कौन सी पढ़ी थी, वो कोई सूरत थी तो अब नहीं, अल्लाह उस नमाज का नहीं जिक्र तू खुद ही दे दे। तो जब इखलास नहीं होता ना और हुसन नहीं होता हमारे कामों में तो हम फिर चिपकते, हम कहते नहीं वो बहुत अच्छी पढ़ते हैं इखलास वाली नमाज, अल्लाह उसकी नमाज के बदले में तू मेरी दुआ कबूल कर ले, यही कहते हैं हम। अब्दुल कादर जिलानी की नमाजें बड़ी अच्छी थी, अल्लाह तो उनके तफ़ैल से मेरी कर दे। भाई उसकी उनकी आपका क्या ताल्लुक है। मसलन आप देखिए कि यहाँ पे आपके इम्तिहान होते हैं और होंगे इंशाल्लाह भी बहुत सारे इम्तिहान आपके, और आप में से कोई आए और आपके आके कहे कि देखे उस्ताज़ा वो अंबरबाजी के पेपर के वसीले से मेरे भी नंबर लगा दें, तो मैं करूँगी, करना चाहिए मुझे है? क्योंकि वो बहुत अच्छा पेपर करती हैं तो आप उनकी वजह से मेरा भी कर दें। कभी आपका किसी का वसीले से वीज़ा लगा, पासपोर्ट मिला, नेशनलिटी मिली, आप चले थे सारे अमेरिकन एम्बेसी में और जाके कहे कि हमारी उस्ताज़ा के पास चूँकि अमेरिकन पासपोर्ट है इसके वसीले से हमें भी दे दें, और मैं आपसे कह दूं कि चले मुझे भी ले दें, मैं आई हूँ नॉर्वे में, चले भाई एम्बेसी वालों देखो ये इतने प्यारे लोग हैं, क्या ये तुम्हें इन पर यकीन नहीं, इन सब के वसीले से मुझे भी नॉर्वे का पासपोर्ट दे दो, मैंने क्या करना। सोचिए यानी सिर्फ अब ये बातें आप तो बड़े खुश होकर सुन रहे हैं लेकिन पिछली आयतों को जहन में रखें, यही वो बातें हैं जिसको सुन के कहते हैं नहीं बस पता चल गया ये वहाबी हैं, छुपाते हैं लेकिन अंदर से ये कुछ और है। हाँ तो लिहाजा अपने रब से ज़िंदा ताल्लुक़ रखें। मैं तो जो नॉर्वे में आने के बाद अल्लाह ताला के लिए एक फीलिंग्स रख रही हूँ वो क्या है कि मेरा अल्लाह ज़िंदा है। इतनी तेज़ी से चेंज होता है वक्त, हर रोज़ नमाजों का वक्त चेंज हो रहा है, हर दिन दरख्तों की हालत बदल रही है। अलहई का जो मैं अगर अब किसी को पढ़ाऊँ तो मेरा ख्याल है वो फीलिंग मैंने कभी नहीं ली होंगी जो मैं अब लूँ। वाकई लगता है ना एक्टिव गॉड, अल्लाह के लिए लफ्ज़ पता नहीं ऐसे बोलने भी चाहिए कि नहीं। और मेरे जहन में वो सूरत अर्रहमान की आते हैं ना कुल्ल यौमिन हुवा फी शान, वो हर दिन नए कामों में लगा हुआ है, कभी पत्ते लगा रहा है, कभी छोड़ रहा है, कभी बारिश आ रही, कभी धूप आ रही, और जहाँ मौसम हालात एक जैसे होते हैं वो लगता है हाँ है एक अल्लाह ऊपर रहता है कहीं, कभी कभी जाते हैं मिलने उसको। हाँ तो लिहाजा अल्लाह से डरिए और अल्लाह से मोहब्बत कीजिए, उसके सिवा कोई ना दे सकता है ना ले सकता है। इंशाअल्लाह ताला इसी ताल्लुक की बुनियाद पे अल्लाह ताला अपने बंदों से फिर क़यामत के दिन मामला करेगा, और अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारी बड़ी बड़ी बातों पर हमें ना पकड़े और छोटे छोटे अमलों को कबूल कर ले। फिर आगे फरमाया 58 में وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا، اور ایسی کوئی بستی نہیں مگر ہم اسے برباد کر دیں گے روز قیامت سے پہلے یا اسے سخت عذاب دیں گے، كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، اور یہ فیصلہ کتاب تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، بڑی زبردست آیت ہے۔ कहा कोई मान ना करे अपनी बस्ती पे, कोई बड़ी ताकत, कोई बड़ा सिक्योर मुल्क, जलजला प्रूफ मुल्क, कोई मुल्क जिसमें कोई कुछ कोई वायरस नहीं फैल सकता, वहाँ सिक्योरिटी अच्छी, वहाँ की बीमारियाँ वहाँ नहीं, कहा हर बस्ती को हम ज़रूर तबाह बर्बाद करेंगे, क्योंकि कुल यौमिन हुवा फी शान और कुल लुमन अलैहा फान। कायनात के अंदर हर चीज़ जो है उसको एक दफ़ा तो गिरना है, एक दफ़ा चीज़ को तो बन के टूट के गिरना है, तो लिहाजा ऐसी तमाम चीज़ें जो होती हैं वो क्या हैं, क़यामत तक टूटेंगे। आप ज़रा सोचें, ग्लोब को सामने रखें, बड़े बड़े मुल्क सोचें और इस आयत को पढ़ के देखें तो क्या पैगाम है, हर बस्ती ज़रूर हलाक होगी। कुछ अपने गुनाहों की वजह से हलाक होती हैं बस्तियाँ, ख़ास तौर पे कब, जब नबियों की बात नहीं मानती लोग कौमें। दूसरी बात है कि कुछ बस्तियाँ अल्लाह के अजाबों से ख़त्म होती हैं, या नोट कीजिएगा कि करियत इनसे मुराद अहले करिया है। मसला अगर जलजला आता है तो वाकई शहर की बिल्डिंगें गिर जाती हैं, लेकिन वो तो मट्टी चूना था, असल तो अंदर वो लोग मरते हैं ना। तो यहाँ करिया से मुराद अहले करिया है। तो क्या मतलब है कि एक तो ये कि हर बस्ती को या तो तबई मौत आ जाएगी या फिर अल्लाह के अजाबों से मरेंगे। अमूमन बस्तियाँ कब हलाक होती हैं, नंबर एक जब वहाँ इस्लाह का काम ख़त्म हो जाए। ये सारी बातें हदीसों से हमें मिलती हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम नेकी का हुक्म दो, बुराई से रोको, वरना अल्लाह का अजाब तुम पे आ जाएगा और तुम दुआएं करोगे और दुआएं कबूल नहीं होंगी। फिर इसी तरह जब बुराइयों से ना रोका जाए तब बस्तियां हलाक होती हैं। और तीसरी बात, बस्तियां कब हलाक होती हैं कि जब लोग इस्तिग़फ़ार करना भी छोड़ देते हैं। सूरह हूद में हम इसके बारे में पढ़ चुके। ज़रूरत इस बात की कि इनफ़िरादी इस्लाह पर भी तवज्जो दी जाए और इज्तमाई इस्लाह पर भी। सूरत अल्लाह आयत 8 और 9 में भी यही बात आती है कि अल्लाह ताला ने इसमें बता दिया कि कभी हम किसी पे जुल्म नहीं करते। और कान ज़ालिका फ़िल किताबी मस्तूरा, 70 से 7 तोरा लिखी हुई बात है, लिखत पढ़त हुई है कि जहाँ गुनाह होंगे वहाँ पकड़ आएगी। आप ज़रा सोचें, दुनिया के वो हित्ते जो इस वक्त बेगदीनी का गढ़ बन चुके, क्या वो सिक्योर्ड है? आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आज ही पेशन गोई कर सकते हैं कि दुनिया के किस किस हिस्से में का अजाब आने वाला है। अभी आए, देर से आए, ये अल्लाह के फैसले हैं, लेकिन आएंगे। और एक छोटी सी बात लिख लें, अपने आप को काफिर कहने वाली बस्तियों पे अजाब जल्दी नहीं आते। हज़रत नूह से लेके अल्लाह के नबी सल्लम तक के नबियों में जिनकी कौमें तबाह हुई वो मुसलमान कौमें थी। आज अगर आप बेरूत का नाम कहते हैं, अगर आज बोस्निया का नाम कहते हैं, अगर आज आप और चंद हाजिर नाम कहते हैं, ये सारे मुसलमान हैं। क्यों मुसलमानों की बस्तियां हलाक हो रही हैं कि जब मुसलमान कहकर इस्लाम ना लाएं, तो मुझे तो खौफ आता है सोच के। हमारे अपने प्यारे, हम खुद जिन मुल्कों में जाते आते रहते, अगर वहाँ अल्लाह का दीन नहीं आएगा तो वो भी अल्लाह ताला की इस बात से नहीं बच सकती। फिर आगे फरमाया, वमा मनअना अन नुरसिला बिल आयाती इल्ला अन कज़्ज़बा बिहल अव्वलून, और नहीं रोका हमें इस अमर से कि हम भेजें कुफार की तजवीज़ करदा निशानियां, मगर इस बात ने कि छुटलाया था इन निशानियों को पहलों ने और वो फौरन तबाह कर दिए गए। वातैना समूदन नाका, और हमने दी कौम समूद को एक ऊँटनी, कैसी थी वो, मुबसीरतन, रोशन दलील थी। क्या किया उन्होंने, फ़ज़लमू बिहा, फिर उन्होंने ज़्यादती की उस पर, नतीजा क्या हुआ, तबाह हो गए। वमा नुरसिलु बिल आयाति इल्ला तख़वीफ़ा, और हम नहीं भेजते ऐसी निशानियां मगर लोगों को खौफ ज़दा करने के लिए। यहाँ इन आयतों में और बल्कि आगे भी हम पढ़ेंगे, कुछ आयत आएंगी, मक्का का ये वो दौर था जब लोग बड़े ज़ोरों शोर से मुझसे मांग रहे थे। कभी कहते कोहे सफ़ा जो है वो सोने का बन जाए, कभी कहते मक्का में कोई चश्मा निकल आए। तो अल्लाह ताला भी यहाँ इशारतन उनको बता रहे हैं कि मत मांगो, क्योंकि जब भी किसी बस्ती में कोई मुझसा आया, अल्लाह ने उनकी मांगी हुई चीज़ उनको दी, इसके बावजूद लोग जब ईमान ना लाए तो अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त हुई। तख़वीफ़ा, खौफ से है ये लफ्ज़, कि बातें तो बड़ी आसान होती हैं कहनी, वो हो जाए, लेकिन उसके बाद जब लोग उस बात को नहीं मानते तो अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। देखिए कि मैं आपको इसको बिल्कुल फ़ी ज़माना आम सी बात में समझाती हूँ कि आपका बच्चा आपसे रोज़ कहे अम्मी खिलौना दिला दो, अम्मी ये दिला दे, बहुत महंगा हो मिसाल है, आप नहीं लेके देते, वो रोता रहता है। आप बताएं कि जब आपने उसको दिया ही नहीं तो आपका एंगल उसके साथ ज़रा डिफरेंट होगा। आप सोचेंगे कि ये रोज़ मांगता है, मैंने नहीं लेके दिया, चलिए वो कहता नहीं मम्मी प्लीज़ ले दें, आप कहते नहीं तुम तोड़ दोगे, तुम ख़राब कर दोगे, तुम मिसयूज़ करोगे, तुम स्कूल नहीं जाओगे, टाइम वेस्ट करोगे। वो कहता नहीं मम्मी नहीं, आप उससे लिखवा लेते हैं ठीक है। अब आपने उसको एक कीमती कंप्यूटर गेम ले दी या कोई भी चीज़, अब क्या होगा? अगर वो उसको तोड़ दे गुस्सा आएगा, वो उसकी वजह से अपने पढ़ाई को छोड़ दे, आप खाने के लिए बुलाएं वो उससे खेल रहा है, गुस्सा कब आएगा? जब आपने ले दी, और जिसको ले दी उसने उसको तोड़ दिया, मिसयूज़ किया, आप कहते हैं आप नहीं तुम्हें लेके दूंगी और आपको गुस्सा आएगा। बस यहीं से समझ लें कि जिस तरह बच्चे खिलौने मांगते हैं ना, कौमें जब नबियों से बच्चों वाला रवैया रखती हैं तो कहते हैं निशानी दिखाएं। मसलन आप देखें ना, कोई आज के किसी आलम दीन को कहे हम आपको आलम दीन इस तौर पर मानेंगे कि आप यहाँ बैठे हैं ना तो आप यूँ हाथ बढ़ाएं, फिर आपका हाथ वो लंबा हो जाए और वो कोने में रखे हुए फ्रिज में से एक ग्लास लेके आप इधर हमें दिखा दें तो हम मान जाएंगे आप आलम हैं। नहीं फिर तो आप ये मानेंगे कि आप मैजिशियन हैं, आप जादूगर हैं। आलिम मानने से इसका क्या ताल्लुक है? कोई तुक नहीं बनती ना। हाँ नबी अगर ये कहना कि हम जादूगर हैं, हम हा हा हू ही कर सकते हैं, तो फिर तो आप कहें नबी तो कहते हैं अल्लाह के बंदो पढ़ो हिदायत लो, तो आप कहते हैं कि हमें वो करना। ये ऐसे ही है जैसे आप किसी भी वकील के पास चले जाएं, आप कहेंगे हम तब कामयाब लॉयर मानेंगे जब आप किसी के दिल का ऑपरेशन करके दिखा दें, तो कहेगा मैंने कब कहा कि मैं कर सकता हूँ। हाँ बेतुकी बातें हम करते हैं ना। तो ये बातें करके अल्लाह ने हमें मैसेज दिया कि बड़ी बड़ी बातें ना मांगो। आप कहेंगे चलो शुक्र है हमारी तो ये बात नहीं, नहीं आज भी लोगों की आदत होती है। मैंने खुद कुछ लोगों को देखा है, बल्कि इसीलिए जिक्र भी करने लगी हूँ कि किसी के जहन में अगर कोई ऐसी चीज़ हो तो उसको रोक ले। मसलन बाज़ लोग अल्लाह ताला से शर्तें मानते हैं। मसलन एक सिस्टर थी तो वो कहने लगी कि मैं अल्लाह ताला से इस तरह बात करती हूँ, मसलन जैसे उनको लेट्स सी अगर सफ़र पे जाना है या कोई उनको कहीं क्लास लेनी है या कुछ भी मिसाल उनकी जो भी होगी मुझे याद नहीं, तो मैं अल्लाह से कहा करती थी कि अच्छा अगर अभी बेल बजे और मेरे भाई घर आ जाएं तो मैं तेरी तरफ से ये दलील समझ लूँगी कि मैं ये काम कर लूँ, और वो नहीं आते थे तो मैं समझती थी मैं नहीं करती। आपने सुनी ऐसी कुछ मिसालें लोगों की? अच्छा अगर ऐसा होना है ना तो अभी बिजली चली जाए, अच्छा बिजली चली गई ना इसके अंदर अब ये होगा, तो ये अटकल है, ये बिल्कुल गैर मुनासिब तरीका है। ये अटकलों से अल्लाह ताला ने रोका है कि तुम ऐसी निशानियाँ मत मांगो। आप कहते हैं अच्छा अगर अल्लाह ताला चाहता है ना मैं ये कुरान का कोर्स पूरा करूँ तो आज के बाद मुझे बिल्कुल कभी सर का दर्द भी ना हो, जिससे मुझे सर दर्द हुआ मैं समझ जाऊँगी कि अल्लाह नहीं चाहता मैं ये कोर्स करूँ। ये मिसाल है, निशानियाँ मांगनी हमारी क्या? और लोग बहुत मज़े से सुना रहे होते हैं जब इस्तखारे की बातें करते हैं। छोटी सी एक लड़की थी कोई बात कर रही थी तो मैंने उसे कहा कि आप इस्तखारा कर लें, कहती वो इस्तखारा तो मैं कर लूं पर मुझे वो निशानी नहीं पढ़नी आएगी, वो समझ नहीं आएगी कि मुझे जो ख्वाब आएगा, मैंने कहा वो तो मुझे भी नहीं समझ आएगी, तो आप बस इस्तखारा कर लें और आप उसके बाद अपना काम छोड़ दें। ये इस्तखारे को भी लोगों ने असल में आज के दौर में निशानियाँ बना रखा है। तो बहरहाल अब एक अल्लाह ताला ने जो निशानी बहुत बड़ी दिखाई थी जिसका तस्करा सूरत के बिल्कुल शुरू में आया था वाक़ मेराज, उससे थोड़ा सा रेलिवेंट टॉपिक आगे आ रहा है। वाइस कुल ना लका, और जब हमने कहा आपको, किसको? नबी सल्लम को। क्या कहा? इन्ना रब्बक अहात बिन्नास, बेशक आपके परवरदिगार ने घेरे में लिया है लोगों को, यानी अल्लाह मुहीत है। पीछे पढ़ चुके हैं, दूसरा रुकू है सूरह बकरा को उसके आखिर में, तो अल्लाह ताला ने लोगों का अहाता किया हुआ है, यानी हर बंदा अल्लाह के कंट्रोल में है, कोई अल्लाह से बाहर नहीं, अल्लाह ताला की बस से बाहर नहीं, दूर नहीं। वमा जालना रोया, और नहीं बनाया हमने उस मंजर को, अल्लती अरैना का, जो हमने आपको दिखाया था। ये कौन सा था? वाकया मेराज। क्यों दिखाया था आपको? इल्ला फितनतल लिन्नास, मगर आजमाइश थी लोगों की कि मानते हैं कि नहीं मानते। याद है पीछे बात हो गई कि कौन कहता है कि ये हो सकता है और कौन कहता है कि ये नहीं हो सकता। कुछ लोग जिनका ईमान पक्का था वो तो सिद्दीक बन गए इसकी तस्दीक करके अबू बकर की तरह, और कमज़ोर ईमान वाले जो लोग होते हैं ना उनके लिए फितना हुआ और वो मुर्तद भी हुए थे, उन्हीं की तरफ इशारा है। याद रखे जब भी एक सीधे सीधे काम में थोड़ी सी अनयूजुअल चीज़ आती है ना, हालात का तगैयर और तबद्दुल, जैसे अल्लाह के नबी उठ के मेराज पे चले गए तो वापस आए ना, तो वो कुछ के लिए एक फितना बना हुआ था। उन्होंने कहा ये कैसा नबी है, ऐसी अजीबोगरीब बातें कहता है, हम नहीं मानते, और कुछ की तस्दीक का ज़रिया है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि नबियों को जो मेराज मिलता है, उरूज मिलता है, अल्लाह उनको नेकियों के मज़ीद मौके दिखा रहा होता है, बस दफ़ा पीछे वाले लोगों के लिए वो आजमाइश बन चुके होते हैं। वशजरतल मलऊनत फिल कुरान, और इस दरख्त को जिस पर लानत भेजी गई है कुरान में, ये कौन सा शजरत है मलूना है, इसके बारे में आता है कि ये ज़क़ूम का दरख्त है। नबी सल्लम जब मेराज से वापस आए तो आपने लोगों को बताया कि शब मेराज में मैंने शजरतुल मलूना देखा है जो कि ज़क़ूम का दरख्त है, और कुरान पाक में इसकी बहुत सारी जगह भी आती हैं। सूरह दुखान में हम पढ़ेंगे इन्ना शजरतज़्ज़क़ूम तामुल असीम, कि ज़क़ूम का दरख्त जो गुनाहगार का खाना है। तो कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह के नबी सल्लम के इस कहने का, जिसमें एक शख्स अबू जहल भी था। पूरी बात पढ़ लें फिर आपको थोड़ी सी इसकी वजाहत कर दूंगी। अल्लाह ताला कहते हैं वनुखविफुहुम, और हम तो इनको नाफरमानी के अंजाम से डरा ही रहे हैं, लेकिन इनका हाल क्या है, वमा यजीदुहुम इल्ला तुग्यानन कबीरा, बस ना बढ़ाया इस डराने ने इनको मगर ये कि वो ज़्यादा सरकशी करने लगे। यहाँ पे बात पूरी होती है। अब यहाँ देखिए कि वाकया मेराज की बात है। पहली बात है यहाँ उसको रुया कहा, और रुयत का लफ्ज़ अमूमन लोग ख्वाब के लिए बोलते हैं। इस लफ्ज़ से बाज़ लोगों को गलती लगी कि वाकया मेराज ख्वाब था और नहीं था। उसके हम दलाइल शुरू में बहुत डिटेल से कर चुके कि ख्वाब होता तो इतना प्रोपेगंडा क्यों होता, ये तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी। ठीक है, एक होती है रुयत कल्बी और एक होती है रुयत बसरी, आँखों से देखना, और एक होता है दिल से महसूस करना। तो यहाँ अल्लाह के नबी सल्लम को ये ख्वाब में नहीं दिखाया गया था, बल्कि खुली आँखों से दिखाया गया था, और जो वहाँ कैफियत थी उसको आपने दिल पर महसूस किया था। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने यहाँ ये चीज़ बता दी कि ये ख्वाब है, और इसका तस्करा सूरह नजम के आयत 12 से 18 में डिटेल से आएगा कि अल्लाह ने तो उसका एक एक मंजर आँखों के सामने कर दिया कि वलकद राहु नज़लतन उख्रा इंद सिदरतिल मुंतहा इन दहा जन्नतुल मावा, और इससे आगे की आयतें हैं। तो आखिर में अल्लाह ताला कहते हैं लक़द रा मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा, तो डेफिनेटली इससे मुराद वाकया मेराज है। अल्लाह ताला ने ये चीज़ बता के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जो लोग थे उनको छांट दिया। कुछ ने कहा कि ये तो बस नबी अब ऐसी अजीबोगरीब बातें करने लगे हैं, नऊज़ु बिल्लाह, हम तो पहले ही कहते थे ये दीवाने हैं। आपको पता है कि वाकया मेराज के बाद तो लोगों को ये यकीन हो गया था कि नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह के नबी क्रेज़ी हैं या एक्सट्रीमिस्ट हैं या जज्बाती हैं, इमोशनल हैं। आज भी लोग ऐसी बातें कहते हैं, वो बातें करने लगते हैं जो हो नहीं सकती, या बहुत जल्दी कर रहे हैं हर बात में। इस किस्म के कमेंट्स शैतान दिलों में डलवा देता था, जिसकी वजह से कुछ लोगों का ईमान कमज़ोर हुआ, वो निकल गए थे अल्लाह के नबी की महफ़िलों से, और फिर अल्लाह ताला ने उनको अल्लाह के नबी के रास्ते से बिल्कुल ही हटा दिया और आपके लिए दूसरे रास्ते खोल दिए। तो यहाँ पे पूरी बात का ख़ुलासा क्या है कि जो मौजज़े मांगते हैं, निशानियाँ मांगते हैं, तो जब कोई निशानी आ जाती है तो फिर बातें बनाते हैं कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, और सरकश होते हैं। हम भी अपनी ज़िंदगी में इसके बारे में बहुत मुख्तात रहें, कभी अल्लाह ताला से कोई मौजज़ा ना मांगे, निशानी ना मांगे, और कभी आ जाए तो फिर उसको दिल की खुशी से कबूल करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो आपके लिए उसको फितना ना बनाए। हर नेमत बंदे के लिए फितना बन जाती है जबकि बंदा उसकी हिफाजत ना करे। तो यहाँ पे एक टॉपिक पूरा हो रहा है, वैसे तो अगला टॉपिक इसके साथ है, लेकिन हम पहले तिलावत सुनेंगे क्योंकि अगली आयतें बहुत ही मुख्तसर तरीके में खूबसूरत अंदाज से शैतान के हथकंडों का तज़किरा है। तो आइए तिलावत सुनते।
وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا